श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम आपको भी बोलना है खाली मैनेजमेंट नहीं करना है जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम आप बंद मत करो बजाते रहो ये जो जगह है ना ये भगवान को पुकारने के लिए बहुत ही अनुकूल जगह है बाकी शायद जगह पर बिल्डिंग बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पर तो पूरा वन है जहाँ पर सही वृंदावन सही ब्रज सही बरसाना प्रकट है इसलिए बिल्कुल वातावरण बहुत अनुकूल है सूरज ढलने जा रहा है वातावरण ठंडा ठंडा होने वाला है प्रसन्न होने वाला है इसलिए हृदय से पुकारो जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम अरे वो नीम गांव वाले भी पुकार सकते हैं जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय जय श्री राधे श्याम थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा सबसे पहले यहाँ पर आने के लिए सबका धन्यवाद ये हमारे भक्ति वेदांत अस्पताल की जमीन है हरे कृष्णा 4.8 एकड़ जमीन है हमारी 8 बीघा और इस जमीन की विशेषता यह है कि ये बड़े एकांत जगह पर है चिकसोली गांव में है ये चिकसोली गांव जो है वो चित्रा सखी का गांव है भगवान के 8 सखी में से एक सखी का नाम है चित्रा सखी चित्रलेखा देवी उनके पिताजी का नाम धर्म भानु जी है तो इनके गांव में ये हमारी जमीन है और ये ज़मीन इतनी दिव्य और अद्भुत ज़मीन है कि इसके किसी भी कोने पर आप खड़े रहेंगे किसी भी कोने में आप 2,20,000 स्क्वायर फीट के अंदर किसी भी स्क्वायर फीट पे आप खड़े हो जाइए आपको ब्रह्मा जी के चारों शीश जो है वो नज़र आएंगे कहीं से भी आप लोग में से कितने लोग 19 तारीख के बाद में आए हैं? हाँ, बहुत कम लोग आए, लेकिन पहले सब लोग थे ना यहाँ पर। यानी मैं संक्षेप में बता देते हैं, ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तपस्या किया सत्ययुग के अंत में और शुरुआत में 1,20,000 साल। तो 1,20,000 साल तपस्या करने के बाद में ब्रह्म भगवान ने दर्शन दिया उनको और आशीर्वाद दिया कि आप जाओ बरसाने में जाके बसो। तो बरसाने में आके ब्रह्मा जी पर्वत बनकर बसे हुए हैं। ये ब्रह्मा जी के चार सर हैं, चार शीश हैं उनके। एक शीश पर उसका नाम है भानुगढ़, जिसमें उनका महल है, भानु महल, यानी कि श्री जी महारानी का मंदिर और उनका घर वहाँ विराजमान है। उसके बाजू में जो येलो दिख रहा है आपको, बड़ा महल जैसा दिखता है ना बड़ा, उसके बाजू में छोटा सा एक वाइट स्ट्रक्चर है, वो जो है वो दानगढ़ है। उसमें दो मंदिर है, एक राधा दान बिहारी जी का, एक राधा कुशल बिहारी जी का, जयपुर मंदिर है, सवाई माधो सिंह महाराज ने बनाया था उसको। उसके बाजू में और एक वाइट स्ट्रक्चर है, वो विलासगढ़ है, वो तीसरा सर है ब्रह्मा जी का। उसके आगे जाएंगे बहुत सारा तो दो स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। उसमें सबसे लास्ट वाला जो है वो मानगढ़ है, जिसमें राधा रानी मान करके बैठ के बैठ जाती है। बीच में जो है वो मोरकुटी है, जो गोल जैसे है ना बीच में। तो मोरकुटी कौन से पर्वत पे आती है? नहीं, वो मत दिखाना मुझे, कौन से विलासगढ़ में आती है कि दानगढ़ में आती है? दानगढ़ पे आती है। तो चारों प्रकार के चारों मंदिर, एक तो ऊंचे गांव से नजर आते हैं, ऊंचे गांव जाएंगे आप तो वो चारों मंदिर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसाने में बहुत मुश्किल है ढूंढने के लिए। लेकिन हमारी जमीन पे आइए, आपको कभी भी चारों मंदिर साथ में दिखाई देंगे। ये अद्भुत नजारा है, बहुत भगवान की बड़ी कृपा है। तो भानुगढ़ में राधा रानी अपने माता पिता के साथ रहती है, बड़े भाई श्रीदामा और छोटी बहन अनंग मंजरी के साथ वहाँ निवास करती है। और वहाँ पर बहुत ही अद्भुत लीलाएं हुई है और होती रहती है, उनका घर है एक्चुअली। तो राधा रानी ने जानबूझकर बरसाने में किसी राक्षस को प्रवेश नहीं दिया है, क्योंकि इस भूमि को वो राक्षस से फ्री रखना चाहती है। केवल यहाँ नहीं, बरसाना, नंदगांव, जावट, ये सभी इलाकों में कोई राक्षस ने प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि यहाँ की सब लीला तो प्रेम लीला ही है, प्रेम माधुरी लीला है, लेकिन उसमें से भी उत्कट और उत्कट लीला जो है वो इस विभाग में करते हैं। इसलिए उसमें कोई राक्षस आएगा बीच में तो बहुत भाव बदल जाएगा। कोई प्रेम की बातें हो रही है, चलो आएगा बीच में राक्षस, तो फिर वो वीर रस में आ जाएंगे ना, प्रेम रस तो बाजू में रह जाएगा, फिर तलवार, चाकू और त्रिशूल सब निकलेगा। तो राधा रानी चाहती नहीं थी कि यहाँ की लीलाओं में कोई ऐसी कोई बाधा आ जाए। वो भी दिव्य लीला ही है, लेकिन उसका भाव अलग है। लेकिन वहाँ पर, यहाँ पर उनको एक भाव की, उत्कट लीलाओं का अनुभव करने की इच्छा थी। इसलिए कहीं भी आप नहीं सुनेंगे भानुगढ़ पे राक्षस आया था, विलासगढ़ पे आया था, साकरीकोर में आया था। वहाँ पर एक ही राक्षस आता था डंडा लेकर मटका फोड़ने के लिए, श्याम सुंदर जी, जो सबको बहुत त्रस्त करते थे। एनीवेज, तो भानुगढ़ में राधा रानी को विनती करने के लिए यशोदा माई कीर्ति मैया के पास आई थी, और वहीं से विनती हुई थी कि उनको भेजो आपके पास, हमारे पास भेजो। वहीं पर कृष्ण भगवान अनंत बार श्यामा श्यामा सखी बनकर जाते हैं, श्यामा गोपी बनकर, भेष बदल कर। कभी ज्योतिषी बन के जाती हैं, हाँ, कभी ब्रह्मचारी बन के जाते हैं, कभी कंगन बेचने वाली, कभी मेहंदी बेचने वाली, कभी फूल बेचने वाली, कभी हाथ दिखने वाली कभी वैद्य बन के, कभी ब्रह्मचारी बन के, कभी सन्यासी बन के, कभी जोगी बन के। वो सारी जो अद्भुत लीलाएं हैं वो भानुगढ़ पे होती है, या तो सांकरिकोर के आसपास होती है। ऐसा कहा गया कि कृष्ण भगवान को अधिक देर नंदगांव में रहना आता ही नहीं है, क्योंकि उनको इतना विरह होता है, इतना विरह होता है कि वापस लौट के आते हैं, वो कुछ कुछ छद्म बना के आते हैं। एक दिन वो योगी बनकर आए, तो इतने गंभीर योगी बनकर आए कि सब गोपियां चकित हो गई। सबने दूसरे को बताया कि अरे सुनो, हमारे गांव में बड़े योगी आए हुए हैं। तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर राधा रानी को भी लेके आते हैं। तो योगी जैसे ही और इकट्ठा होते तो और ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो योगी की बहुत प्रश्न करते हो, क्या ये जानते हो, क्या वो जानते हो, क्या। तो आखिर में हम बोलते हैं बहुत सारे प्रश्न, लंबी लंबी कथा है, लेकिन आखिर में बहुत सारे प्रश्न पूछने के बाद एक प्रश्न पूछते हैं कि अभी हम आपको तभी मानेंगे जब आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि हमारे मन में कौन है, क्या आप बता सकते हो। तो योगी बड़ी ध्यान करके ऐसे बैठ जाता है, सोचता हुआ ऐसे कौन है इनके मन में। बाद में कहता है मैं समझ गया आपके मन में कौन है। तो क्या आप सच्ची योगी हो तो उनका दर्शन करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हैं, उसमें क्या है, योग सीखा किसके लिए। तो कहते हैं सब लोग आंखें बंद कर लो, अभी दर्शन कराते हैं आपको। सब गोपियां बेचारी भोली वाली आंखें बंद कर लेती हैं, तुरंत योगी योगी हमारे जो आए हैं वो तुरंत देश बदल के कृष्ण बन जाते हैं। आंखें खोलो, आ गया ना, कहा था ना हमने, सब जानते हैं। इस तरह से भगवान चटपटी दिला करते हैं। अभी इसके बीच में राक्षस आ सकता है क्या, अभी ऐसा कुछ चल रहा है अंदर की बात, तो सडनली नोबडी कैन कम इन लाइक दैट। इसलिए गोपी और राधा रानी ने राक्षस को यहाँ पर बिल्कुल प्रवेश नहीं दिया है। और कहा जाता है कि वो ऐसे कभी कभी आते हैं और ऐसे गली पे पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, सही पेड़ ऐसे खड़े हो गए और खड़े होकर वो पत्थर बिन रहे हैं इधर से रास्ता से निकाल के। तो गोपियाँ बड़े गोपियाँ आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं वो, नहीं पत्थर बिन रहा हूँ, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि जस्ट आई एम बिजी यू नो, दिखा रहे हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, कुछ काम में लगा हूँ, लेकिन ध्यान केवल उस पर लगा हुआ है, कभी राधा रानी आएगी तो दे दर्शन करूँगा, ऐसा है वो, उनको एक पल भी रहा नहीं जाता है उनके बिना। और यहाँ पर आना है तो सखी बनकर आना है, सखी भाव में आना है तो हमेशा सखी भाव में ही यहाँ पर आते रहते, कभी कंगन बेचने को आते, कभी मेहंदी लगाने वाले बनकर आते और राधा रानी को रिझाते रहते। एक बार सभी गोपियों ने तय किया कि भाई कृष्ण और कमारी तो रोज चोरी करते हैं, अभी देखो अभी मैं बैठा हूँ तुलसी बाबा के साथ, हाँ बात कर रहा हूँ, कुछ देर बाद में ये माइक्रोफोन गायब हो जाएगा, कुछ देर बाद करताल गायब हो जाएगा, कुछ देर मोबाइल गायब हो जाएगा, रूम पे जाऊँगा तारे मोबाइल भी नहीं, करताल भी किधर गया, बाद में मालूम पड़ गया तुलसी बाबा ने लिया है। लेकिन ये रोज का है, बात कर रहे हैं तो यहाँ का मणि गायब, इधर का मणि गायब, इधर का मणि गायब, कभी सर की कंठी गायब, सर की वो जो श्रृंखला साखड़ी होते हैं वो गायब। तो सब गोपियाँ परेशान हो गए, रोज के रोज कुछ ना कुछ चोरी, और कभी कभी फिर इनके जेब में हाथ डालते तो जेब में मिल जाता है। वो कहते हैं कि क्या है ना कि जब मैं आपको मिलता हूँ तो मेरे हाथ और पैर जो होते हैं ना वो एकदम ऐसे बेकाबू हो जाते, पता नहीं क्या करते रहते, कहाँ से क्या उठाते हैं, कहाँ डालते हैं, कुछ मेरे काबू में रहता नहीं है, इसलिए अगर मेरे जेब में है निकाल के ले लो। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है। बहुत होशियार बनते हैं वो, तो ये सब कुछ देख देख कर गोपियाँ बड़ी तंग आ जाती है, बोलते एक दिन उनको अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। तो एक दिन जैसे वो आते हैं मिलते हैं तो कहते हैं बैठो बैठो बैठो, आपके लिए बहुत सुंदर व्यंजन लाया आज, इतना बढ़िया भोजन बना के सोच समझ के लाया है, अब आज पहले पेट भर के खा लो आप लोग सब लोग। तो इनको इतना खिलाता है इतना प्रेम से, कोई वाद विवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, एकदम वो प्रेम से खाते हैं। और कुछ देर बाद में ना ऐसे ऐसे हो जाते हैं, फिर भी खिलाते हैं, फिर कुछ देर बाद में ऐसे हो जाते हैं, फिर भी खिलाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर भी खिलाते हैं, उनको वहीं सो जाते हैं। इतना खिलाते हैं, अरे तुमने ये नहीं खाया, अरे वो उसके घर का ये नहीं खाया, ये तो बहुत बढ़िया था, सबने खाया तुमने मिस कर दिया, खाओ खाओ इसको, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, ऐसे करके सो के भी खिलाते हैं, फिर बाद में वो पूरी तरह सो जाते हैं। और इतनी गहरी नींद सोते हैं, गोपियाँ सब कुछ देख लेते हैं कि भाई हिला के देखते हैं, इधर करके देखते हैं, सब कुछ करके देखते हैं, एकदम गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर इशारा करते हैं और श्यामचंद्र का सारा श्रृंगार उतार लेते हैं, कंप्लीट नखशिखांत, सर से मोर पंख में जो सांकड़ी लगी हुई है वहाँ से लेकर पैर के उंगलियों तक जो भी पहना हुआ है सारा उतार लेते हैं, बस थोड़ा पीताम्बर छोड़ देते हैं, बड़ी मुरली वही सब ले लेते हैं, मोर पंख मुरली एवरीथिंग, कमर काचनी बाजू बंद कलाई बंद अंगूठियाँ सारी चीज़ ले लेते हैं, चले जाते हैं। बोले आज तो हमारी तो एक एक मणि की बात है ना, अभी आज पूरा सब छीन लिया तुम्हारा, देख लेते क्या होता है, सब चले जाते हैं। बहुत घंटे के बाद में ये नींद से उठते हैं तो उधर कोई नहीं है, नोबडी इज देयर। उठ के देखते तो क्या सारा श्रृंगार खाली, लेकिन तो अंतर्धानी भगवान है, वो जानते हैं वो सब कौन करता है सब, पूरा ठीक हो आते हैं, घर चले जाते हैं। तो मैया परेशान हो जाती है, अरे इतना सुंदर श्रृंगार सुबह किया था, किधर है वो, एक चीज भी साथ में नहीं है, इतना नटखट हो गया। अभी तो पहले पहले एका देखा चूज खो के आता था, मैं तीन तीन बार कस कस के घुंघरू बांधती थी तो फिर भी एक टूट के आता था, आज तो पूरा सब कुछ खो के आया है, इतना गैर जिम्मेदार कैसे बन गया तू। तो श्याम सुंदर जी हंसते हैं, बोलते भैया कोई बात नहीं, आ जाएगा सब, वापस आ जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो, निश्चिंत रहो, जब हम कह रहे हैं आ जाएगा सब। कोई बात नहीं। फिर अगले दिन बरसाना गांव में एक नई सखी आती है, नई नई ब्याही हुई, और नई नई ब्याही हुई सखियों का ना एक ऐसा यहाँ पर एक रिवाज है, सबसे लंबा घूंघट मारती है वो, जितना लंबा रहेगा ना कमर तक, मतलब वो एकदम बहुत ही फ्रेश है एकदम। कल ही शादी हुई उसकी, जितनी नई दुल्हन उतना लंबा घूंघट मारते हैं, इतना लंबा बहुत चमकता हुआ घूंघट और श्रृंगार, सब लोग पूछते हैं कहाँ से आई हो, तो कहते नंदगांव से आई हूँ, नई नई ब्याही हो क्या, हाँ नई नई ब्याही हो, और कन्हैया करके पुकारती है और धाड़ करके गिर जाती है। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य देखे, इतना प्रेम, एक नाम लेते हैं इतना बड़ा, इतना प्रेम, बेहोश हो गई, तो हवा देते हैं उसको उठाते हैं, तो वो सुनकर बहुत सारी गोपियाँ इकट्ठा हो जाती है, और सारी हजारों गोपियाँ इकट्ठा होती है, तो फिर ये गोपाल करके पुकारते, फिर बेहोश हो जाती है। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग भी कृष्ण पर प्रेम करते हैं, इतना प्रेम लेकिन कहीं दिखा नहीं, शायद नई नई नंदगांव से ब्याही हुई है, तो कहाँ जा रही हो, श्री जी को मिलने जा रही हो, उसका दर्शन करना है मुझे। ऐसे करते करते हर बार जितनी बार गिरती है उतनी बार और हजारों गोपियाँ इकट्ठा होती हैं, और फिर सबको जमा होने के बाद एक बार और गोपाल होता है, फिर वापस बेहोश हो जाती है। कई बार श्री जी के महल के दरवाजे तक पहुंचने तक कई बार बेहोश हो जाते हैं, और लास्ट में कहते हैं कि अभी श्री जी का दरबार का दरवाजा आ गया है, अभी श्री जी का घर आई में अभी मिलने ही वाली है वो, उतने में कन्हैया श्याम सुंदर करके पकड़ के पुकार के गिर जाती है, एकदम तो बेहोश हो जाती है। और इस बार तो ऐसी बेहोश, इतनी गहरी बेहोश कि आप पानी छिड़को, मंत्र बोलो, ये करो, हिलाओ, कुछ भी चाहे करो, उसका तो सांस तक का नाम नहीं है, रुई भी लेके नाक पे लगाते हैं तो रुई भी नहीं, हल्की सी हल रही है लेकिन वो सांस की तो कोई ठिकाना नहीं है, मतलब लगता है मानो गई गोपी, नई नई गोपी गई। और उनको इतनी प्रेरणा मिल रही थी क्योंकि ब्रज में ना कोई द्वेष नहीं करता किसका, अरे कल के आई गोपी हमसे अधिक प्रेम करती, हमसे अधिक कृष्ण का दिल जीत लेगी, इसको आगे नहीं करना है, पीछे रखो इसको। ऐसा नहीं होता है, वो लोग बड़े प्रेरित हो गए, उसका सम्मान करने लगे कि हमसे भी, हमें भी इतना प्रेम नहीं जितना इस नई गोपी में प्रेम है, उसकी सराहना करते हैं, उसके बारे में आश्चर्य व्यक्त करते हैं। और ये सीधे राधा रानी के दरबार के सामने, गेट के सामने बेहोश पड़ी हुई है। अभी तो सब लोग परेशान हो गए, बहुत देर तक कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फिर ललिता विशाखा के पास चर्चा आती है, तो ललिता कहती है मेरे पास एक आइडिया है, हमने कल ही तो सब कुछ कहना चुराया है श्री कृष्ण का, इसका विरह श्री कृष्ण के लिए इतना हो रहा है, क्यों ना हम श्री जी को, राधा रानी को श्याम सुंदर बनाए, और श्याम सुंदर यहाँ पर है नहीं, उनको भी तुरंत कैसे यहाँ पर लाए, लेकिन राधा रानी घर पर है, उनको सांवला रंग देकर पूरा श्रृंगार ऊपर से नीचे तक पहना देंगे श्री कृष्ण का, और त्रिभंग रूप में खड़े रहकर मुरली बजाने को बोलेंगे, वैसे भी तो मुरली के गुरु तो वही हैं, मुरली भी बजा सकती है उनकी तरह। तो ये आइडिया सबको अच्छी लगती है, कुछ गोपियों को उनकी सहारे छोड़ के ललिता विशाखा तुरंत श्री जी के महल में उनका श्रृंगार करने के लिए भेज देती है, और श्रृंगार तो पूरा कृष्ण का तो वही रहता है ना हेड ऑफिस में। तो सारी सखियां बहुत जल्द जल्द सांवला रंग बना देती है राधा रानी को, पूरा श्रृंगार करती है, मुरली मोर मुकुट पहना सब कुछ पहना देती है, पीताम्बर पहना देती, सब कुछ पहना देती है, और उनको सजा कर फिर फाइनल बाहर लेकर आती है जहाँ पर ये बेहोश पड़ी हुई है, और उनको कहती है अब ये मुरली लो, बजाना शुरू करो, और त्रिभंग अवस्था में आ जाओ अभी आप। तो तुरंत वो भी व्याकुल है, वो देख रही है कितनी कठिन परिस्थिति है, कोई आनंद का समय नहीं है कि भाई थोड़ा मुरली बजाया जाए, नाच किया जाए, ऐसा कुछ थोड़ी है। एक गोपी की जान जा रही है तो जल्दी जल्दी में सब लोग तुरंत राजा रानी खड़े होकर मुरली बजाने लगती है। जैसे ही राधा रानी मुरली बजाती है, ये सखी जो है ना धाड़ करके उठ के खड़ी हो जाती है, पूरा घूंघा नुंघट फेंक देती है, कहते हैं पकड़ा के नहीं तुमको अभी, बड़े होशियार बनते हो आप, हाँ सोचते हो कि हम बड़े होशियार हो तुम, लेकिन तुमसे होशियार मैं हूं। तो पूरा रंगे हाथ एक एक चीज के साथ तुमको पकड़ लिया ना, उतारो अभी उतारो 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 उतारो, सब लोग सारी हजारों गोपियां शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सब मिलकर ये कुछ चुराया था ना, तो ये थाट से खड़े हो जाते हैं। सब गोपियां बेचारी शर्मिंदा होकर एक 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 करके उतारती है, इनके पास जमा करती है, बड़े रुबाब से उठाते हैं, एक एक पहनते हैं, जैसे जैसे आता है वैसे पहनते जाते हैं। लास्ट में फिर वो सांखली उसके ऊपर मोर पंख आता है, और लास्ट में जाकर राधा रानी के हाथ से गोपी मुरली छीन लेते हैं। बड़े आए मुरली चुराने वाले, वो भी हमसे, हाँ, और फिर खुद मुरली बजाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, मुरली बजाते हैं, अब मैं जा रहा हूँ, दोबारा मत करना ऐसे, इससे बड़ी सजा मिलेगी, हाँ। ये लीला भी भानुगढ़ पे हुई है, ऐसे बहुत सारी लीलाएं। तो भानुगढ़ ऐसे घरेलू प्रेममय लीला के समृद्धि से वहाँ पर संपन्न है। आगे वाला जो गढ़ है वो है दानगढ़। जय हो, गायत्री का समय हो ही रहा है वैसे भी। ये हमारे हर प्रवचन में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ऐसा बीच में एक बहुत सुंदर म्यूजिक आएगा अपने मर्जी से। तो जयपुर के सवाई माधो सिंह राजा थे, वो कुछ 500 वर्ष पहले की बात है। उस समय श्री जी का मंदिर बहुत जीर्ण अवस्था में था, तो वो राजा थे, उन्होंने सोचा एक नया मंदिर बनाया जाए श्री जी के लिए। तो उन्होंने कहते हैं कि कई साल लगे, कितने कितने साल लगे उनको बनाने के लिए, 5 साल लगे, नहीं पता नहीं, बहुत साल लगे, और बहुत हजारों टन पत्थर जो है वो चढ़ाया गया पहाड़ पर, और पहाड़ पर उसको खोदकाम किया गया, उसका क्या कला काम, नक्शी काम किया गया उसके ऊपर, इतना मेहनत किया होगा, आप जाके देख के आए होंगे सुबह। मैं आपको विनती करता हूँ कि मैं भी तो नहीं चढ़ पाऊँगा उधर, इसलिए आपको यहीं से बता रहा हूँ, आप कल सुबह जाकर नहीं दर्शन होगा, कल 6 बजे जाना है हमको। एनीवेज, तो इतना बड़ा विशाल महल बना दिया, इतना बड़ा विशाल, कितने साल लगे उनको, और एक एक जो खिड़की का दरवाज़ा, एक एक मेन गेट इसका, एक एक तुलसी वृंदावन का जो डेकोरेशन है ना, वो एक 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 चीज़ पर इतना मेहनत किया है उन्होंने। और वो 400-500 साल के बाद में भी आज आपको पता चलता है कि मेंटेन न करते हुए भी कितना बड़ा कला है उसके अंदर। ऐसा भव्य मंदिर इतने साल के बाद में, हजारों कर्मचारियों ने बनाने के बाद में जब वो तैयार हो गया, और जब कल श्री जी महारानी को वहाँ से लेकर यहाँ पर लाना है, बड़ा उत्सव करना है, तो आज की रात राजा के स्वप्न में राधा रानी आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगी। सब लोग सुन रहे हैं पीछे, मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगी क्योंकि वो मेरा घर नहीं है, मेरा घर जो है जहां पर मैं हूं मेरा घर है, मेरे पिताजी का महल है वो, तो मैं वो छोड़कर आपके यहां पर नहीं आ सकती, मेरा निज घर है वो। तो राजा ने कहा आपकी इच्छा मेरी इच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, नए विग्रह को स्थापन कर लेते हैं। अगर मैं उस जगह पर होता राजा की जगह, तो कहता पहले ही कि वो जब मैंने काम शुरू किया तभी सपने में क्यों नहीं आए आप, है ना, सपने में आना ही आपको है, आ जाई, इतने दिन पहले जब मैं काम का प्लानिंग कर रहा था तब सपने दे देते कि भाई नहीं आऊंगी मैं वहां पर, तो इतना मेहनत ही नहीं करते हम लोग। ये हमारा शहरी दिमाग है, भौतिक काम वासना वाला दिमाग हमारा है, हम लोग खुद की सोचते हैं हमेशा, लेकिन जो भक्त होते हैं ना भगवान के, वो केवल भगवान की इच्छा सोचते हैं हमेशा। उन्होंने एक एक कण भर भी बुरा नहीं माना कि राधा रानी ने मुझसे बेकार मेहनत करवाया, एक कण भी, क्योंकि वो जानते थे कि मैंने तो सेवा किया है, राधा रानी ने सेवा तो स्वीकार किया है, मंदिर में नहीं आई है वो उनकी मर्जी है, वो महारानी है, उनकी इच्छा है, और उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, मैं मेरी इच्छा के अनुसार मंदिर बनाया था, उनको प्रसन्न करने के लिए बनाया था। और अगर उनकी प्रसन्नता उनके घर में रहने की है तो उनकी प्रसन्नता उनकी प्रसन्नता है, हमारी प्रसन्नता उसके ही अंदर है। तो कोई दुख नहीं हुआ उनको, बड़े से भारी हृदय से दूसरी मूर्ति लेके आए, रोते रोते स्थापन किया, ऐसा कुछ नहीं। वो जो मंदिर है ना, इतना भव्य, एक बड़े विशाल भक्तिमय त्याग का एक लक्षण है वो। कभी कभी हम लोगों को, हमारे न्यू वृंदावन में बहुत लोगों ने बहुत साल सेवा किया था, बहुत प्रचार करके बहुत लोगों को भक्त बनाया था, अचानक उनको वहां से मुंबई भेज दिया गया कि मुंबई प्रचार करो। तो बोलेंगे अरे इतना मेहनत इतने जगह पर किया, उसका क्या परिणाम होगा? अभी वो कुछ नहीं, जैसे गुरु जी की इच्छा है वैसे पूरी करते हैं, कोई अटैचमेंट रखते नहीं कि भाई ये मैंने डीटी वर्शिप यहाँ पर किया था 15 साल तक, मैं यहीं पर डीटी वर्शिप भी करते रहूँगा। हमारे एक प्रभु जी थे मंदिर में, बहुत साल तक हेड पुजारी रहे वो। तो उनको एक दिन महाराज ने बोला कि अभी आप गोवर्धन निकोवले चले जाओ। तो बड़े दुखी हो गए थे, ऐसा क्यों किया, मुझे नाराज़ है क्या, मैंने कुछ गलती किया, इतने साल से अच्छा सेवा किया, अचानक क्यों भेज दिया मुझे। उनको लग रहा था कि उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में उनको अनुभूति हुई कि पनिशमेंट नहीं, उनके लिए वरदान था, एक्चुअली प्रमोशन था उनके लिए, स्पिरिचुअल प्रमोशन। तो हमारी छोटी बुद्धि से हम सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ, मेरा जो प्लान था भगवान के लिए वही सही था, वो दूसरा क्यों बताया जा रहा है मुझे, वो इतना कठिन है, वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वगैरह वगैरह। लेकिन गुरु जी की आज्ञा राधा रानी की इच्छा एक होती है, जब वो इच्छा प्रकट होती है तो शुरुआत में हमें मन मन में अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन अंतिम हमारे कल्याण के लिए होता है वो। तो राजा ने एक बहुत ही दिव्य भक्ति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे आने वाले स्थितियों को प्रतिसाद देना चाहिए, उसका एक सुंदर उदाहरण खड़ा किया वहाँ पर। उसके आगे मंदिर है सफ़ेद रंग का, वो दान बिहारी जी का है। वहाँ पर साकरी कोर मणि की जो पर्वत जुड़ते हैं, वहाँ पर एक आदमी का जाने का एक दिशा में रास्ता होता है, या तो गोपी आ सकती है या तो यहाँ से कृष्ण आ सकते, दोनों में से एक रास्ता है। वो रास्ते पर बहुत झगड़े होते हैं गोपियों के और राधा रानी के और कृष्ण के साथ और ग्वाल बाल के साथ। ग्वाल बाल कृष्ण की पार्टी, राधा रानी गोपियों की पार्टी में बहुत झगड़े होते हैं कि आप लोग यहाँ से हमारे रास्ते से जा रहे हो, दधी माखन बेचते हो, पैसा कमाते हो, हमारी ज़मीन से जा रहे हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। डंडा उठाते हैं, डंडा कहाँ गया है ना, इधर गया, अरे इतना दूर मत रखो उसको, रह जाएगा उधर ही। तो डंडा से रोक देते हैं, बहुत बहस करते हैं, बहुत आतंक करते हैं भावना वाला, और फिर मटका से, डंडा से मटका फोड़ देते हैं, और बहुत परेशान करते हैं राधा रानी को, गोपियों को। तो कभी कभी राधा रानी, सब लोग ग्रुप हार जाते हैं, कभी कभी राधा रानी हावी हो जाती है उनके ऊपर, ललिता देवी हावी हो जाती है। तो बहुत चटपटी लीला है वहाँ पर, मटकी फोड़ी हुए वहाँ पर, बहुत चिकनी और सफ़ेद रंग की शिला है वहाँ पर, हाथ पोछे हुए निशान भी है, क्योंकि मटकी से मक्खन जो गिरा उसको चाट चाट के भगवान खाते हैं बड़े मज़े से। फिर जब उसको उनको एक बार अरेस्ट करते हैं तो उनका फेटा उतार देते हैं, तो फेटा खींचते हुए जाते हैं तो फेटे के निशान भी बने हुए हैं, ऐसे अद्भुत चिन्ह है उस वहाँ पर जगह पर। हाथ पोछे हुए शिला के चिन्ह हैं, मक्खन गिरे हुए, चिकनी शिला है बहुत, ऐसे फिसल जाएंगे उसको आप, आज भी सफ़ेद रंग की शिला है और आगे फेटे के खींचे हुए निशान है। वो सब लीला जो है वो ब्रह्मा जी जो पत्थर बनकर खड़े हैं उधर, वो उनको देखते ही मक्खन की तरह मुलायम बन जाते हैं। जैसे ही सखियों के, राधा रानी के, कृष्ण के चरण वहाँ गिरते हैं ना, वैसे ही वो पत्थर जो है वो मक्खन की तरह मुलायम शीतल बंद हो जाता है, और भाव विभोर होकर ब्रह्मा जी उस लीलाओं को देखते हैं, और भाव की लीला वहाँ प्रकट होती है। तो एक लीला में राधा रानी, वो ललिता देवी बड़ा शांत अच्छा योजना बनाती है, और कृष्णदेव कृष्ण भगवान गोपियों को अरेस्ट कर लेती है, और छोड़ने के लिए एक ही वादा करते हैं वो लोग कि आपको कल गोपी बनकर आना होगा सब लोगों को, और तुम्हारा जो नेता है ना वही सांवला सा राधा रानी बनकर आएगा, अपने अपने घर से मटका भर के लेके आएंगे सब कुछ बनाकर, और हम आएंगे गोप बनकर और तोड़ेंगे इस। तो वो लीला में कृष्ण गोपी राधा रानी बनकर आते हैं, राधा रानी कृष्ण बनकर आते हैं, और मटका फोड़ते हैं कृष्ण का, वो सब गोपियाँ चाट चाट के खाती है उसको। तो वो जो राधा रानी कृष्ण बने हुए हैं, कृष्ण राधा रानी बने हुए हैं, उसका दर्शन वो व्हाइट मंदिर में है। जो कृष्ण बने हुए हैं वो भी मंगलसूत्र धारण किए हुए हैं उनके पास राधा रानी जो है वो स्वयं कृष्ण है, वो दान बिहारी जी हैं। वहीं पर एक ब्राह्मण आया था, वो तीन कन्या होने की वजह से रो रहा था बहुत, तो कृष्ण से भिक्षा मांगी उन्होंने कि हमको कुछ दे दो, तीन कन्याओं को शादी करना है। तो कृष्ण भगवान ने को सोचा कुछ देर तक, सब लोग सुन रहे ना दूर दूर तक नदी किनारे तो ब्राह्मण रोया बहुत, कृष्ण के लिए दान मांगा, तो कृष्ण ने कहा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बहुत सोचने लगा क्या है क्या है, तो उसको मन में याद आया, हाँ मेरे पास एक चीज तो है। तो तुरंत संकल्प करते हैं और राधा रानी को ब्राह्मण को दान दे देते, तो मेरा एक ही धन है, जीवन धन राधा ही राधा ही राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, और कुछ है ही नहीं। तो वो दे देते हैं, तो ब्राह्मण बहुत जोर से रोने लगता है, क्यों बोलो, पहले तीन थे अभी चार हो गए अभी कहाँ भिक्षा मांगने जाऊं तो ब्राह्मण का रोना देखकर कृष्ण को बड़ी दया आती है। तो कृष्ण भगवान सब गोपियों को बुलाते हैं, बोलते हैं आपका सारे अलंकार उतारो, राधा रानी को हम एक पलड़े में तराजू में बिठाएंगे, और सारे अलंकार से जितने अलंकार होंगे ब्राह्मण को दान देंगे। तो वो सारे अलंकार ब्राह्मण को दान देते, ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है, हरे कृष्णा, वो लीला भी वहाँ पर हुई है। तो दानगढ़ पे विशेषता से भगवान प्रेम का दान राधा रानी से मांगते हैं, भिक्षुक बनकर याचक बनकर आते हैं, और अति प्रेम स्नेह का दान श्री कृष्ण वहाँ मांगते हैं। हमको भी यहाँ बैठकर वो प्रेम और दान की भिक्षा मांगनी चाहिए वहाँ पर। उसके बाद में विलासगढ़ है, विलासगढ़ में नाम ही विलास है, मतलब झूला झूलते हैं, हर प्रकार का विलास आनंद वहाँ पर होता है। उसके आगे मोरकुटी है, उसके आगे मान मंदिर है। तो मान मंदिर जो है वहाँ पर राधा रानी रूठ कर बैठ जाती है, किसी कारण अनेक कारण से राधा रानी रूठती है। फॉर एग्जाम्पल अभी राधा रानी उनकी वो मुरली की गुरु है, राधा रानी कृष्ण की नाच नृत्य की गुरु भी हैं, तो ये क्या करते हैं, बड़े कुशल हैं, बहुत होशियार हैं, हर एक चीज़ को तुरंत पकड़ लेते हैं शिक्षा के लिए, लेकिन राधा रानी नृत्य सिखा रही है तो जानबूझकर गलत कदम डालते हैं एवरी टाइम। एक स्टेप सिखा ना ऐसे एक दो तीन चार, तो फिर एक दो तीन पाँच ऐसे कुछ करेंगे, तो फिर सिखाएंगे, अरे ऐसे नहीं श्याम सुंदर जी ऐसे, फिर दिखाती है, फिर गलत डालेंगे। तो कुछ देर बाद में राधा रानी को समझ में आता है कि टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है अगर मैंने एक ही झटके में अगर वो कदम सीख लिया तो क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जो टीचर का संग है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो टीचर का संग जो है लंबा करने के लिए वो बार बार उसको कदम डालते हैं, और वो इतनी भोली है तो उनको समझ में नहीं आता है पहले, लेकिन बाद में समझ में आने के बाद बड़ा गुस्सा आता है, तो सब छोड़ के फिर वो चली जाती है। कभी अभी देखो उधर उधर क्या नाम उसका अंजन बिहारी में तो पहले आ गए खुद, बार बार मुरली बजा रहे हैं, और कभी कभी खुद लेट आते हैं। तो एक बार वो लेट आ गए कृष्ण, राधा रानी बहुत पहले ही आ गए श्रृंगार करके, तो बड़ी परेशान हो गई, तो वो इतनी परेशान हो गई कि जमुना पार गई और रोई वहाँ पर बैठ गई, इतनी रोई इतनी रोई कि एक पूरा कुंड बन गया मानसरोवर। ऐसे कई कारण हैं। एक बार एकांत में बैठे थे दोनों, और राधा रानी ने कहा कि आज हम एक दूसरे का श्रृंगार करेंगे, तो एक दूसरे ने एक दूसरे का श्रृंगार किया बड़े प्रेम से, बहुत देर तक हर प्रकार का 16 श्रृंगार किया। उसके बाद में राधा रानी ने कहा अभी मेरे श्रृंगार का वर्णन करो आप, यू डिस्क्राइब माय ब्यूटी। अब श्री कृष्ण से इधर उधर देखने लगे, अभी इतना सौंदर्य को मैं क्या उपमा दे दूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको इनकी उपमा में उसकी उपमा में इनको दे सकूँ। आकाश में देखा, इधर देखा, सब जगह कोई जचा नहीं उनको, फिर देखा कि अरे चांद तो है, कुछ बराबरी हो सकती है, तो कहते हैं कि आपका चेहरा जो है वो चांद जैसा है, मतलब आप चंद्रमुखी हो। कितनी औरतें यहाँ पर बैठी हुई है, अगर आपके पतिदेव बोलेंगे आपका चेहरा चंद्र जैसा है, तो आप बोलेंगे क्या बनाओ, बोले आपके लिए क्या चाहिए आपको शाम को आज, टेल मी व्हाट यू वांट, यू आर सो नाइस, यू आर सो स्वीट, एक बार और बोलो, क्या गाना था पिक्चर का, वो कहते रहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ये तारीफ करने के बाद का गाना है। तो ये सब कुछ कुछ नहीं होता है, ये खाली हम बता रहे हैं कि होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इसमें से। उनको बड़ा गुस्सा आ गया, अरे चांद का उपमा देने के बाद किसी को गुस्सा आता है? बोले बिल्कुल आएगा, हमारे पास कारण है, 1 2 3 4 5। बोले क्या का? बताओ कारण क्या है? बोले चांद में दाग है, हमारे समुद्र में कोई दाग नहीं है। देखो आप उधर ऊपर देखो, देखते अरे कितने दाग है कोई दाग इस पर? कहां से दाग नजर आए आपको? तुलना करने के लिए कुछ बुद्धि का इस्तेमाल किया कि नहीं आपने? फिर बोलते चांद जो है वो कुछ दिन के बाद में क्षय होता है उसका। अरे 15 दिन में इतना, बाद में 1 में इतना, 2 में इतना, 3 में इतना, बाद में 15 आएगा तो 0 है ही नहीं। चांद का सौंदर्य कम होने वाला है, घटने वाला, बढ़ने वाला है। हमारा सौंदर्य कभी घटता नहीं है, केवल बढ़ते जाता है। एक जगह टिकता भी नहीं और हमेशा ज्यादा मिलेगा आपको। दो, तीसरा कारण लो, इस चांद को ग्रहण लगता है, हमारे सौंदर्य को कदापि ग्रहण नहीं लगता है। 4, चांद जो है पर प्रकाशित है, हमारा सौंदर्य स्वयं प्रकाशित है। हम सारे सौंदर्य का स्रोत हैं, सारा सौंदर्य विश्व में हमारी ओर से उत्पन्न होता है। और 5वीं, कितना, 4 हो गए, कितने हो गए, 5। 5वीं चीज बोलते हैं कि चांद जो है ना उसके पीछे बहुत तारे घूमते रहते हैं। चांद जो है, चंद्रमा जो होते हैं, चंद्रमा के पीछे बहुत तारे लगे रहते हैं, और चंद्रमा का दिल भी बटा रहता है हमेशा एक एक तारे के पीछे। लेकिन हमारा जो निष्ठा है, हमारी जो स्वामित्व, हमारा जो क्या कहते हैं उसको, चैस्टिटी है, पतित्व, पतिव्रत्य जो है वो आपके प्रति समर्पित है, उसमें कहीं लवलेश भी नहीं है इधर का उधर का, एकाग्र है, पूरा समर्पित है। और ये भी हम बात सब सहन कर सकते हैं, वी कैन स्टिल टॉलरेट दिस। लेकिन एक बात के लिए आपने चंद्र का नाम दिया है वो टॉलरेट नहीं कर सकते हम, वो है चंद्रावली का आधा नाम चंद्र है। चंद्रावली को चंद्रावली राधा रानी की राइवल है, राइवल गोपी, प्रतिस्पर्धी गोपी है, मतलब उसका आधा नाम का नाम में चंद्र है। तुम उसके नाम की तुलना मुझे कैसे कर सकते हो? जाओ, हम बात से बात नहीं करते आपसे, और चले जाते ऊपर, ऐसा है। तो रुट जाती है, फिर वहाँ पर बहुत लंबी कहानी है। वो ललिता देवी आती है, वो हाथ मिलाने का प्रयास करती है, उधर देखती है, उधर देखती है, उधर देखती है, उधर देखती है, बहुत दुखी तो कृष्ण है लेकिन थक जाते हैं ललिता देवी। क्यों? वो वहां जाती है तो वो ठुकरा देती है, फिर यहां आती है बोलते जाओ जाओ बनाओ, क्या कर रहे हो, जाओ। तो वहां जाते तो और 2 कदम ऊपर चढ़ जाती है, फिर वापस आती है बोले क्या कर रहे हो, जाओ उसको मनाओ, मैं तो मर जाऊंगा इधर ही, क्योंकि वो रो रहे हैं, पूरे आंसू बह रहे, उनका पूरा काजल ऐसा बह के बह रहा है वस्त्र पे सब, कह रहे मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा तो मेरी मुरली और गुंजेमाला दे देना उसको। ऐसे बोलते ना निर्वाणी की गोष्ठी, मुझे लास्ट फाइनल वसीयत की बात कर रहे हो। तो वो भी दुखी है, वो प्रेम करती है ना, चाहती है इन तो मिले, लेकिन वो मानती कहाँ है। बाद में कहती है कि आवत जावत हार गई, मतलब थक गई मैं अभी इनके पीछे, ऊपर नीचे करते, कितनी बार ऊपर नीचे गई मैं। फिर अचानक कुछ कान में बोल देती है, फिर श्री कृष्ण भगवान जो मोर बन कर आते हैं, हाँ, और नृत्य करते हैं, और धीरे धीरे राधा रानी का जो क्रोध है वो निकल जाता है, मान, और वो खुद मोरनी बनकर नाच करने लगती है। वो इतनी झूम झूम कर नाचते हैं, इतनी झूम झूम कर नाचते हैं कि आखिर में मोर मोरनी गले मिलते हैं। तब जो मोरनी बनी हुई राधा रानी है, उनको पता चलता है कि ये मोर और कोई नहीं है, श्याम सुंदरी है। ऐसे मोर लीला वो मोर कुटी पे होती है, और उधर बैठकर राधा रानी देखती है, फिर साथ में आकर नृत्य करते हैं, वो मोर कुटी है, यहाँ पर मोर बनकर राधा रानी का मान भगवान ने शांत किया है। और एक ही लीला नहीं है, कई लीला है। कभी दोनों आते हैं और अपने मोर मोरनियों को बुलाकर नचाते हैं, कभी दोनों आते हैं और मोर मोरनी की तरह नाच करते हैं, कभी दोनों स्वयं मोर और मोरनी बनकर खरे खरे बनकर आते हैं और नृत्य करते हैं। और आसमान भी कैसे, बादल आते हैं, ठंडी ठंडी हल्की हल्की आवाज करके हल्की हल्की बूंदे गिराते हैं। और म्यूजिक क्या है पता है, वो जब मोर नाचते हैं वो सब गोपियाँ छुम छुम करके कंगन बजाते हैं, फिर बैठकर पायल बजाते हैं ऐसे, फिर वो कृष्ण मुरली निकाल के मुरली बजाते हैं, और बादल फिर गड़गड़ाहट हल्की हल्की, वो सारे म्यूजिक में फिर सब मोर आ जाते हैं और नृत्य करते हैं। एक बार ऐसे राधा कृष्ण आ गए वहां पर, और हवा इतनी सुंदर बह रही थी कि दोनों के ऐसे उत्तरी वस्त्र ऐसे हवा में ऐसे उड़ रहे थे। वो देखकर बादल को प्रेरणा हुई, बादल ने भी बूंदे गिराने आरंभ कर दिया। जब बादल गिरी, बादल ने आवाज किया तो सब मोर ऊपर देखते देखते आए, तो राधा रानी ने अपने मोरनियों को इशारा किया, कृष्ण ने अपने मोरों को इशारा किया, फिर म्यूजिक शुरू किया अपना नेचुरल म्यूजिक। वो जो म्यूजिक है उनका, उसको सुनकर सारे देवता प्रभावित हो जाते हैं और आकाश में इकट्ठा होते हैं, अपने अपने वाद्यों को लेकर आते हैं और उसके सुर को मिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी को वो सुर मिलाना नामुमकिन हो जाता है। कोशिश करते रहते हैं एंड तक वो कौन सा सुर है, लेकिन पकड़ नहीं सकते उनको। केवल कंगन घुंघरू और मुरली का मिलाप है उसके अंदर और कुछ नहीं है। फिर उसमें वो सभी मोरों को प्रेरणा देते नाच करने के लिए, सब बहुत झूम झूम को मोरों को नचाते हैं, और मोर आते हैं और हजारों मोर आते हैं, सब नाचते हैं। जब बहुत सुंदर नृत्य होता है फिर ये भी बीच में प्रवेश करते हैं और नृत्य करते हैं। ऐसे रोज नृत्य की मोर की नीला वहां पर होती है। ऐसा है मोर कुटी और वो है मान मंदिर। आपके आनंद के लिए राधा रानी ने ये चारों गढ़ों का दर्शन एक साथ में कर लिया है। हरे कृष्णा। अभी मौसम भी इतना सुंदर हो गया है, देखो सूर्यास्त हो रहा है। महेश जी आप सूर्यास्त का फोटो निकाल रहे ना, निकालो निकालो। अभी एक बात आपसे आपको करनी है सब लोगों को। इस जगह का महात्म्य तो मैंने सुना दिया आपको। ये जगह जो है हम लोग कभी करीब 2005 से ढूंढ रहे थे। 2002 से हमने कैंप दोबारा शुरू किए, वैसे 92 में शुरू किए थे, 2002 में दोबारा शुरू किए, फिर कभी खंड नहीं पड़ा उसके अंदर। लेकिन हर साल हमारी कैंप में नंबर बढ़ते गए। जब मैंने पहली बार कैंप किया तो 185 ऑपरेशन किए थे, सेकेंड टाइम किया तो 220 किए थे, तीसरी बार किया तो 480 किए थे, उसके बाद में 520 हो गए, फिर 590 हो गए, ऐसे करते करते 800 तक नंबर पहुंच गए हर साल। तो 2005 से ही मन में आया था कि यहाँ पर एक अच्छी जगह होनी चाहिए। कैंप कैंप कितना करेंगे, तो टेंट बांधो हर समय खर्च करो, एक जगह होना चाहिए। तो उसमें तब से जगह का खोज शुरू किया हमने, लेकिन कोई ना कोई बाधा से जगह हुई नहीं कभी। 2007 में फिर राधा माधव आश्रम बंद रहा था, उसके पहले राधा माधव आश्रम जहाँ पर आप रहते हो ना, सब लोग सुन रहे हैं ना, बड़ी रोचक कहानी है ये। तो हम लोग जब 2002 में कैंप करते थे तो बिनानी भवन था वहाँ पर, तो बिनानी भवन में रहते थे, ऑपरेशन थिएटर भी वहाँ पर रहता था और ऑपरेशन भी वहाँ होते थे, यज्ञ भी वहाँ करते थे झाड़ के नीचे, अशोक के पेड़ के नीचे। तो तभी राधा माधव बंद रहा था। राधा माधव का आश्रम जो है वो 35 साल तक लड़ाई लड़ी उन्होंने कोर्ट की बांधकाम करने के लिए, मतलब जवान ट्रस्टीज बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे में उनको आश्रम देखने को मिला, इमेजिन। वो जब 35-40 साल के थे तब जगह लिया था उन्होंने, जब 75 के हो गए तो आश्रम का उद्घाटन हुआ। तो हम लोग की नज़र थी उसके ऊपर, हम लोग उनको मिलके आए थे, जब आपका बनेगा तो हम लोग यहाँ पर भी उसका सेवा करने का प्लानिंग करेंगे। तो बन गया तो हमने उनका आश्रम भी रेंट किया, वहाँ पर भी हमने यज्ञ रहने की व्यवस्था सब किया। तो उन्होंने हमारी सेवा देखा 2 साल, इतने जवान लोग आते हैं यहाँ पर, इतने उत्साह से सेवा करते हैं, इतने युवा अवस्था में होने पर भी कितनी एकाग्रता है, कितना मन लगा कर काम करते हैं। हमेशा पूछते थे, अरे कहाँ से तुम ये मूर्तियाँ लेके आते हो, किधर से लेके आते हो सब मूर्ति, इतने जवान जवान लोग, उत्साही लोग, कि सेवा देखकर हम दंग रह जाते हैं, ना नींद है ना रात है ना दिन है। तो एक दिन उन्होंने बोला कि आप लोग इतना मेहनत करते हो, क्यों ना जगह ढूंढते हो, जगह नहीं मिल रही आपको, हम आपको अपना आश्रम में जगह बांध के देते हैं, हम यहीं पर आप शुरू करो। तो हमने चर्चा किया, बोला ठीक है। हमारे डिज़ाइन से उनके खर्चे से उन्होंने वो हॉस्पिटल बांध के दिया हमको। हाँ, हमारी चंद्रमुखी माता जी आती थी, वैष्णव प्रभु आते थे उस समय, अपने तरीके से अपने ढंग से अपने स्टाइल से उसको बॉम्बे स्टाइल से बनाया, पूरा खर्चा उन्होंने दिया। और 2007 में 29 मार्च को हमने उसका उद्घाटन किया, रमेश बाबा जी आए थे, यज्ञ किया हमने, सबसे सर्वोच्च जो पुरोहित हैं सप्त देवालय के पुरोहित प्राण गोपाल आचार्य उनके द्वारा यज्ञ कराया, बहुत सुंदर यज्ञ हुआ था उसमें। तब जाकर वो मंथली कैंप शुरू हुआ। हमने कहा हम रोज नहीं आ पाएंगे, पहले ही बोलते हैं हम लोग बस मैन पावर नहीं है, हर महीने 7 दिन आएंगे, साल का तो कैंप करेंगे, उसके बाद हर महीने में 7 दिन आएंगे और 100-100 ऑपरेशन करके जाएंगे। लेकिन वो भी उसके बाद भी पेशेंट बाकी रहने लगे, साल के पेशेंट भी बाकी, मंथली पेशेंट भी बाकी, हर महीने में बैकलॉग। हाँ तो क्या करें, 3 साल चला ऐसे ही, 2007, 8, 9, 10, 4 साल हो गए, संख्या बढ़ती जा रही है लोगों की, साल भर की बढ़ रही है, महीने की भी बढ़ती जा रही है, मैन पावर टाइम कम पड़ रहा है। तो फिर उस समय जगह की जांच चारू थी, उस समय हर जगह जगह की जांच चारू थी, कितनी जगह देखी, पूरी पूरा बरसाना छान मारा है, गोवर्धन रास्ता, छाता रास्ता, हर जगह पर, उधर नंदगांव तो उधर संकेत के आगे तक जाके दे जगह देख के आए, हर जगह के भाव करके और चप्पा चप्पा छान मारा हम लोग ने। तो 2011 में हमारे डॉक्टर गौरांग सुंदर प्रभु है ना, सब जानते हैं ना, एवरीबडी नोज गौरांग सुंदर प्रभु और उनकी पत्नी निकुंज बिहारिणी माता जी, मुंबई में प्रैक्टिस करते थे, चित्रकूट में पढ़कर आए थे, अनुभव लेकर आए थे, और टॉप डॉक्टर थे बॉम्बे के उस समय के, टॉप डॉक्टर, टॉप वांटेड एंड टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर, सीनियर मोस्ट। उन्होंने तय किया कि अभी हम ब्रज में सेवा करेंगे, और ब्रज में रिटायर होने के बदले में जब कुछ शक्ति है तब तक ही ब्रज में जाएंगे तो कुछ सेवा कर पाएंगे। तो तभी बॉम्बे का इतना लिक्रेटिव प्रैक्टिस छोड़ के वो दोनों यहाँ आने का तय हुआ। उनका त्याग और प्रेरणा देख के वहाँ के कुछ स्टाफ भी हमारे प्रेरित हो गए, उन्होंने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। तो 15 लोगों की टीम वहाँ शिफ्ट हो गई, और उसी जगह पर जो हमने मंथली कैंप करते थे वहीं पर डेली हॉस्पिटल शुरू किया 2011, 6 अक्टूबर 2011। तो 2011 को जब ये लोग शिफ्ट हो गए तो उसी महीने के एंड में ये जगह 4 बीघा मिल गई। कुछ समय से मुझे मन में एक विचार था कि जब तक फुल टाइम वहाँ पर कोई नहीं जाएगा तब तक कुछ होगा नहीं, और जैसे ये लोग शिफ्ट हो गए एक महीने के अंदर ये 4 बीघा जो सामने का पार्ट है ना, वो जब गाड़ी खड़ी है वहाँ का सामने का पार्ट जो अभी बाउंड्री किया है, 4 बीघा यानी 2.5 एकड़ होता है, 2.4 एकड़ होता है, उसका हमने सौदा किया और ख़रीद लिया उसको, और 6 महीने नहीं गए तो और आगे का 4 बीघा जो हिस्सा है वो भी हमने ख़रीद लिया एकदम इधर उधर। और इतनी मुश्किल थी लेकिन पता नहीं वो धन भी कैसे आ गया और भगवान के दया से उसको इकट्ठा हुआ, आश्चर्य तरीके से धन इकट्ठा हुआ, इतना सारा धन तो, बहुत सारा धन तो ऐसे ईमेल में इकट्ठा हुआ, कुछ बातचीत भी नहीं हुई, यहाँ से ईमेल लिखे वहाँ से बैंक में जमा हो गए। इसका मतलब क्या होता है कि राधा रानी की जब कृपा होती है और उनकी इच्छा होती है ना तो बहुत सबसे मुश्किल से मुश्किल चीज़ें सी आसान हो जाती है। या और ये भी बात साबित होती है कि करने वाले हम नहीं हैं, हम तो खाली प्रयास करते हैं और प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन करने वाले तो वही है ठाकुर जी और राधा रानी। हमारा प्रयास को कम नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, लेकिन होना वही है जब उनकी इच्छा है। ऐसे जो अशक्य प्राय चीज़ लग रही थी वो अचानक आसान से अपने हाथ में आ गई। आज मुझे आपके सामने बैठकर मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, मुझे अभी भी कभी विश्वास नहीं होता है कि सच में हमारी भूमि जमीन बरसाने में हो गई, ये अभी भी यकीन कभी आता नहीं है। इसलिए बार बार मैं यहाँ पर आके यकीन करता कि हाँ फाइनली हमारी ज़मीन हो गई। और हमारे ब्रजवासी मित्रों ने कहा कि प्रभु जी आज आज से आप ब्रजवासी हो गए, लोकल हो गए, लोकल, आपका एड्रेस अभी लोकल है। तो बड़े प्रेम से कहते हैं बात को, कहने का तात्पर्य यह है कि ये बड़े दूर मतलब गहरे स्वप्न का एक पहला कदम है जो कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि बरसाने में, ब्रज में, राधा रानी के चरणों में एक अस्पताल होना चाहिए, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में आँखों के जितने भी किस्से हैं वो यहाँ पर उसका उत्तर मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर उस किस्से का उत्तर नहीं है तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह की स्थिति, इस तरह के दर्जे का हॉस्पिटल यहाँ पर होना चाहिए, ये हमारा स्वप्न है। और गौरांग सुंदर प्रभु, उनकी पत्नी और सच्ची प्राण प्रभु, इन्होंने अपना बहुत जीवन इसमें नछावर किया हुआ है, इस सत्य को, इस सपन को सत्य में लाने के लिए, और भी सत्य को सप्तमी आना बाकी है, अभी तो दृश्य रूप में भूमि आ गई है केवल, लेकिन भूमि भी राधा रानी ने दी है तो इतनी सुंदर भूमि दी है। देखो आप किस प्रकार से इसको देख के इतना आनंद आता है, इसके हरे भरे खेत और चारों तरफ से चार पहाड़ों का दर्शन, सूर्योदय सूर्यास्त का दर्शन, इतना अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। ये पेड़ जो है ना, ये 125 साल पुराना पेड़ है, ऐसा पेड़ आपको दुनिया में कहीं भी सपने में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये पीपल का पेड़ है,
24 घंटे ऑक्सीजन देता
है। ये पेड़ भी तुलसी की तरह 24 घंटे प्राणवायु देता है। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, ये आम का पेड़ है, उसके आगे एक देखो बड़ा तुलसी बड़ा पीपल का पेड़ है, वैसे ही है, इससे छोटा है वो। वो कुछ 75-80 ईयर्स पुराना पेड़ है। ये थोड़ा सा इतना थिक नहीं है, वो बहुत थिक है, गहरा है बहुत वो। ये आम का पेड़ है, यहाँ पर एक झोपड़ी थी, उसको तोड़ना पड़ा बाउंड्री के लिए, दोबारा बनाएंगे मिट्टी की, एयर कंडीशन होती झोपड़ी। वो झोपड़ी में बैठ के मैंने बहुत बार जप किया है, और इतना यहाँ पर शांति और एकांत और राधा और कृष्ण का निवास यहाँ पर है इस जगह पर, में संदेह नहीं है किस बात का। तो हम इतने दूर जंगल में आपको क्यों लाए हैं, कुछ ना कुछ तो हेतु होगा ना हमारा। वो हेतु यह है, अभी सब सुन लो, अब तक सोए हुए तभी जग जाओ। नहीं नहीं, आप जगे थे, मैं जानता हूँ। हेतु यह है कि कोई भी दिव्य कार्य जो है ना, वो भगवान के भक्तों की कृपा से नहीं होता है, कृपा के बिना नहीं होता है। जब तक भक्त लोग हृदय से राधा रानी को प्रार्थना नहीं करते हैं कि हमारी ये इच्छा है आपकी सेवा में, तब तक राधा रानी प्रतिसाद नहीं देती है। और हम जानते हैं आप बरसाने इतने दूर आए हो, इतनी सेवा की आपने, इतने दिन तक ब्रजवासियों का आशीर्वाद लिया, सेवा करके गीत गाया, भगवान का नाम लिया, भगवान का प्रसाद पाया, जल प्राशन किया, यहाँ पर विश्राम किया, ब्रजवास किया, इस भूमि का स्पर्श किया, इस रज का आस्वादन किया, तो आप लोगों की राधा रानी जरूर सुनेगी, इसलिए ये विश्वास से मैंने आपको यहाँ पर लाया है। तो अभी आप लोग क्या करो, अभी सब लोग मेरे ओर देख रहे हो, सब लोग अभी पहाड़ की ओर देखो, सब लोग टर्न हो जाओ, सब लोग एकदम टर्न हो जाओ, और भक्ति वेदांत के कर्मचारी हो या ना हो, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो, यू आर फैमिली मेंबर्स। और हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना ये है, मेन प्रार्थना हमारी यही नहीं है कि जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए और अस्पताल खड़ा हो जाए और यहाँ पर सेवा शुरू हो जाए। हमारी सबसे पहली प्रार्थना ये है कि बरसाना आई कैंप जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, आप बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है बरसाना आई कैंप, बताइए ना, आपको क्या समझ में है? प्रेम से की हुई सेवा के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, यहाँ के जो बाबा है रमेश बाबा जी महाराज, वो भी कहते हैं कि आप लोगों की जो सेवा है वो प्रसिद्ध दो चीजों के लिए है। एक है बहुत ही सुंदर ऑपरेशन, कभी आंख खराब नहीं होती है, ये आपके लोगों के अंदर ख्याति है, अच्छे क्वालिटी का ऑपरेशन। और दूसरी यहाँ की आपकी विशेषता, लोगों के मन में ऐसे वो बताते हैं कि आप लोगों की सेवा से लोग यहाँ बड़े प्रभावित हैं। आप जिस तरह से उनको भोजन खिलाते हो, साफ करते हो, उनको दाढ़ी साफ करते हो, उनको टॉयलेट लेके जाते हो, उनको ऑपरेशन ले जाते हो, फिर ब्लैंकेट देते हो, रोटी खिलाते हो, उनको डिस्चार्ज करते समय गॉगल देते हो, 40 दिन की दवा देते हो, फॉलोअप करते हो, दो कैंप करते हो, या आप लोगों की बम्बई लोगों की सेवा के भाव से लोग प्रसिद्ध है, प्रसन्न है सब लोग, तो ये दो चीज़ें आप कभी भी खोना नहीं, चाहे 200 ऑपरेशन हो जाए, 10 हो जाए या 5000 हो जाए, ये दो बातों को बरकरार रखते हुए आपको ये कैंप आगे चलाना है। तो सबसे पहले मैं आपको विनती करूँगा ये बात का कि आज तारीख क्या है, 23 फरवरी 2016, 100 साल के बाद में तो ना हम रहेंगे और शायद यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा मोस्टली, अभी कलयुग के समय में यहाँ के आज के आगे 100 साल मतलब बहुत सपना ही हो गया वो। तो हम रहे ना रहे हम, लेकिन महका करेंगे बन के कली। मतलब क्या, इसमें खुशबू किसकी है, सेवा भाव की खुशबू है, सेवा भाव महकता रहना चाहिए, चाहे हम चले जाएं लेकिन जो लेगेसी धरोहर यहाँ पर खड़ी करके रखी है वो आगे जानी चाहिए। तो पहले आपको प्रार्थना करनी है, सबसे पहले चारों मंदिरों को, चारों ठाकुरों को, कि 100 साल जाए, 1000 साल चले जाए, लेकिन ये जो धरोहर खड़ी हो गई है सेवा की, ब्रजवासियों की, निस्वार्थ भावना से अच्छे दर्जे की हृदयपूर्वक सेवा करने का जो ब्रीद यहाँ पर प्रस्थापित किया गया है वो वैसे ही बना रहे। पैसे का चैलेंज नहीं है बड़ा, एक्चुअली पैसा विल कम एंड गो, लेकिन भाव जो है ना वो कलयुग में बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, उसका क्षीण और ह्रास हो जाता है जल्दी। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि आप लोगों के माध्यम से दूसरी पीढ़ी को, उस दूसरे पीढ़ी के माध्यम से तीसरे पीढ़ी को, फिर चौथे पीढ़ी को, ये जो भाव है, भाव की धरोहर जो है वो सबको प्राप्त होनी चाहिए। ये आप प्रार्थना कीजिए। और दूसरी प्रार्थना कीजिए कि ब्रजवासियों की सेवा में एक बहुत ही अच्छे दर्जे का अस्पताल यहाँ पर खड़ा किया जाए, और बहुत अच्छे अच्छे भक्त और बहुत अच्छे कुशल डॉक्टर्स जो भक्त हैं, स्वयं वैष्णव हैं, राधा रानी पर श्रद्धा रखते हैं, वो सब यहाँ आने के लिए प्रेरित हो जाएं, या उनके लिए रहने की व्यवस्था हो जाए, उनके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था हो जाए, और यहाँ पर ब्रजवासियों के दरवाजे पर बहुत ही सुंदर दर्जे की आँखों की सेवा यहाँ पर उपलब्ध की जाए, और उसके बाद में औरतों की डिलीवरी और बच्चों की रोगों की देखभाल, इस प्रकार की सेवा यहाँ पर हो जाए। हरे कृष्णा। सब लोग प्रार्थना कीजिए अभी। बहुत धन्यवाद आपका।